ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता को लेकर सरकार को बताया प्रतिबद्ध, कहा विकास के प्रयास संबंधी बातों को भी संचार माध्यम जनस्तर तक पहुंचाए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की केन्द्रीय कमेटी बैठक में समूहगत विचार विमर्श से आए प्रतिवेदन पेश करने का क्रम हुआ शुरू। कोरोना वायरस नियंत्रण के उद्देश्य से उच्चस्तरीय अनुगमन समिति का हुआ गठन और कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की वैश्विक संकट की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संचार जगत से आग्रह पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर जनता के प्रति उत्तरदायी होने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में मौजूद एक्शन रूम से आज नेपाल टेलीविजन के इटहरी प्रसारण केन्द्र का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ऐसा आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनता के मनोबल को टूटने न देकर उनमें आशा जगाने में संचार माध्यमों को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। इस बात का जिक्र करते हुए कि समृद्ध नेपाल और सुखी नेपाली की आकांक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से विकास के लिए किए गए प्रयासों के बारे में भी अच्छी तरह से जनता को बताने में संचार माध्यम विफल रही है, उन्होंने इस विषय में संचार माध्यमों का ध्यान आकृष्ट किया। मौके पर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद पांसकोटा ने कहा कि संचार माध्यमों को निराशाजनक और भ्रामक समाचार संप्रेषण करने की बजाय तटस्थ होकर सत्य और तथ्यपरक समाचार संप्रेषण करने चाहिए। इस दौरान ये बताते हुए कि पत्रकारिता जगत को सबल बनाने के लिए विज्ञापन आयन लाया गया है, उन्होंने कहा कि जल्द ही नेपाल टेलीविजन और रेडियो नेपाल को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में ले जाने की तैयारी हो रही है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विभिन्न संवैधानिक आयोगों के वार्षिक प्रतिवेदन पेश किए गए। बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री भानुभक्त ढकाल ने न्याय परिषद एवं न्याय सेवा आयोग का आर्थिक वर्ष 2075-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किए। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रीय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग और मुस्लिम आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए थे। वहीं सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा द्वारा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति में रहने वाले सदस्यों के नामों में तब्दीली के लिए किए गए प्रस्ताव और विभिन्न समितियों में नए सदस्य रखने और कुछ सदस्यों के बदलाव के लिए किए गए प्रस्ताव को बैठक ने स्वीकृत किया। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने समसामयिक विषयों में सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की केन्द्रीय कमेटी की बैठक के तीसरे दिन आज समूहगत प्रतिवेदन पेश करने का क्रम शुरू हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की रिपोर्टिंग पूरी होने के बाद सभी 15 समूहों के नेताओं द्वारा अपने अपने समूह में हुए विचार विमर्श के बाद आए प्रतिवेदनों को पेश करने का क्रम शुरू हुआ है। पार्टी के दो अध्यक्षों केपी शर्मा ओली और पुष्पकमल दहाल प्रचंड के राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल के सांगठनिक प्रतिवेदन और विधान संशोधन प्रस्ताव पर समूहगत विचार विमर्श कर आज 3 समूहों के नेताओं ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने चीन के वुहान शहर में मौजूद नेपालियों के उद्धार के लिए सरकार से अनुरोध करते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरतने के लिए सार्वजनिक अपील की है। आज एक बयान जारी करते हुए सभापति देउवा ने ऐसी अपील की। बयान में नेपाल प्रवेश के सभी अंतर्राष्ट्रीय नाकों पर प्रभावकारी हेल्थ डेस्क संचालन के आग्रह के साथ ही कहा गया है कि वुहान शहर में मौजूद करीब 100 नेपाली विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य नेपालियों को नेपाल लौटाने को लेकर सरकार का किसी प्रकार की गंभीरता न दिखाना दुख की बात है। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा कुमारी अड़ियाल ने कहा कि दक्ष जनशक्तियों के विदेश पलायन को रोकने के लिए देश में ही रोजगारी की संभावनाएं ढूंढना बहुत जरूरी है। काठमांडू के सिफल में स्थित शहीद स्मारक जनस्वास्थ्य कॉलेज के 11वें वार्षिकोत्सव में मंत्री अड़ियाल ने कहा कि सभी विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली ने अनुदान समझौता करने से बाकी रहे लाभग्राहियों की खोज करने का स्थानीय सरकारों व प्राधिकरणों को निर्देश किया। आज मकवानपुर के हटौड़ा में आयोजित भूकंप प्रभावित संरचनाओं के पुनर्निर्माण संबंधी प्रगति समीक्षा कार्यक्रम में प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवाली ने ऐसा निर्देश किया। नेपाल प्रहरी के केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी ने बालुवाटार स्थित ललिता निवास की जमीन संबंधी अपचलन की जांच कर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल के नेतृत्व में सीआईबी की टोली ने बुधवार को इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी। ये जानकारी प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा ने दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
14-15 बजारमा नयाँ कि छैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15 मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। प्रदेश नंबर 2 की सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत बेटियों की बीमा के लिए निर्धारित बीमा रकम 1,00,000 को बढ़ाकर 3,00,000 करने का निर्णय किया है। प्रदेश नंबर 2 की मंत्रिपरिषद की आज की बैठक ने विक्रम संवत 2075 साल माघ 1 कते के बाद पैदा हुई बेटियों की बीमा रकम को 3,00,000 रूपये करने का निर्णय किया है। ये बात मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताई। इसके अलावा बैठक ने जनकपुर धाम में मौजूद प्रादेशिक अस्पताल को प्रदेश का पहले स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान में परिणत करने का निर्णय भी किया है। वैदेशिक रोजगार का लोभ दिखाकर भारत की ओर ले जाने के दौरान 2 युवतियों का नेपाल प्रहरी ने पूर्वी नाका काकड़भिट्टा से उद्धार किया है। इस मामले में पुलिस ने दुलखा तामाकोशी गांवपालिका 4 के 21 वर्षीय सुदीप बाबू पोखरेल को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय काकड़भिट्टा ने दी। कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के उद्देश्य से स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल के नेतृत्व में उच्चस्तरीय अनुगमन समिति का गठन किया गया है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। इस उच्चस्तरीय समिति में गृह रक्षा संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन अर्थ और परराष्ट्र मंत्रालय के सचिव रहेंगे। साथ ही स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव खगराज बराल की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों के सहसचिव सम्मिलित निर्देशक समिति और विभिन्न अस्पतालों के प्रमुख व विशेषज्ञ सम्मिलित प्राविधिक समिति का गठन किया गया है। धरान स्थित बीपी कोयराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में इलाज के लिए आए एक मरीज में कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका की गई है, इसलिए अस्पताल ने उसे परीक्षण के लिए राष्ट्रीय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा टेकू काठमांडू भेजा है। ये जानकारी आकस्मिक कक्ष के प्रमुख डॉ ज्ञानेन्द्र मल्ल ने दी। रूपंदेही के सेना मैना में आज मोटरसाइकिल और स्कूटर के टकराने से हुई दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। मरने वालों में रूपंदेही की सेना मैना 7 स्थित बैरकट्टी के 20 वर्षीय सुदीप चौधरी और 20 वर्षीय नवीन चौधरी शामिल हैं। ये जानकारी इलाका पुलिस कार्यालय पुटबल ने दी। इसी तरह परसा के वीरगंज में स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से 12 की परवानीपुर गांव पालिका 5 के 16 वर्षीय आकाश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 4 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी पुलिस ने दी। इसी तरह सुरखेत के वीरेंद्रनगर में ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर दी, जिससे 1 व्यक्ति की मौत हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस को लेकर वैश्विक संकट घोषित किया है। चीन में अब तक इस वायरस से 170 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 देशों में ये वायरस फैल चुका है। WHO के हालिया डेटा के अनुसार दुनिया भर में कोरोना वायरस के 7,800 मामले पाए गए हैं। इस वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर में एक अवैध वाइल्ड लाइफ मार्केट से हुई थी। चीन के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस के 100 और मामले पाए गए हैं। इस वायरस के कारण लोग चीन का दौरा रद्द कर रहे हैं। चीन को लेकर दुनिया भर में नकारात्मक छवि बन रही है। इस वायरस के डर से फेस मास्क की भी मांग बढ़ी है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनोम गेब्रेयेसुस ने जिनेवा में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में इस वायरस से निपटने में चीन की सक्रियता की तारीफ की, लेकिन उन्होंने इस वायरस के बाकी के देशों में फैलने को लेकर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा, वैश्विक संकट केवल चीन को लेकर घोषित नहीं किया गया है। वैश्विक संकट बाकी के देशों में कोरोना के मामले में कोरोना के मामले पाए जाने के कारण किया गया है। हमारी चिंता ये है कि जिन देशों में ये वायरस फैल रहा है वहां के हेल्थ सिस्टम बहुत ही खराब हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता को लेकर सरकार को बताया प्रतिबद्ध, कहा विकास के प्रयास संबंधी बातों को भी संचार माध्यम जनस्तर तक पहुंचाए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की केंद्रीय कमेटी बैठक में समूहगत विचार विमर्श से आए प्रतिवेदन पेश करने का क्रम हुआ शुरू। कोरोना वायरस नियंत्रण के उद्देश्य से उच्चस्तरीय अनुगमन समिति का हुआ गठन और कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की वैश्विक संकट की घोषणा। इसी के साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार। शुभरात्रि।